21 शाकल नगर के पास रणांगण में शल्य की सेना से मुठभेड़ हुई। उस युद्ध में शल्य सेन का सफाया हो गया। स्वयं मैंने शल्य को पदहस्त करके सेनापति के सम्मुख युद्ध बंदी के रूप में उपस्थित किया। उसकी पुष्ट ग्रीवा अवनत हो गई थी, परंतु उसको नत करने के लिए हमको हिरण्यवर्मा और व्याघ्रदत्त खोने पड़े। उसको मुक्त कर दो, आज्ञा हुई। शल्य के बधे हुए हाथ मुक्त कर दिए गए। शल्य, आखिर हो तो तुम भी सशक्त यवन और बर्बर जैसे असभ्य राज्यों से घिरे हुए मद्रदेश के ही नायक। तुमसे किसी भी प्रकार की उदारता की अपेक्षा हमें न कभी थी और न कभी होगी। पर्वत के नीचे खड़खड़ करते हुए बहने वाले तुम जैसे नाले के जल से पर्वत शिखरों का अभिषेक कभी नहीं हुआ करता, यह भी मत भूलना। सदा शांत रहने वाले हमारे सेनापति की नीली आंखें आंख बरसा रही थी। गाल कटीले सेहुण की कली जैसे एकदम लाल हो गए थे। कपाल पर नसें तन गई थी, उनसे श्वेत टपक रहा था। उनकी नासिका का अग्रभाग क्रोध से रक्तवर्णी दिखाई देने लगा। उनका वह सात्विक संताप केवल शल्य के कारण हमें देखने को मिला। शोण कृष्ण नदी के जल में अपने कितने हाथी और नौकाएं बह गई? लगभग 700, मैंने उत्तर दिया। उन सब की पूर्ति इस मद्र राजा से करवा लो। और उन्होंने कटिवस्त्र में से शल्य का वही भोजपत्र निकाला, उसको मेरे हाथ में देकर शल्य के कंठ में अपने विजयी धनुष की माला डालकर उसको जोर से हिलाते हुए वे बोले, क्षत्रियत्व के अहंकार से अंधे हुए इस असभ्य राजा से इसी भोजपत्र के पृष्ठ भाग पर एक बार नहीं बल्कि 5 बार लिखवा लो कि सुतपुत्र भी बुद्धिमान होते हैं और युद्ध कर्म अच्छी तरह जानते हैं, कभी कभी तो नामधारी क्षत्रिय से भी अधिक। उनके मस्तक की नसें फूल उठी थीं। संकुचित होते हुए हनु थरथरा रही थी। 22 शल्य के पराजय की सूचना अपने आप ही पंचनद में सर्वत्र फैल गई। आसपास के बर्बर यवन शशक कम्बोज राज्य स्वयं ही शरण में आ गए। सबसे कम भार लेकर और शल्य से समस्त हानि की पूर्ति करा के ही हम पंचनद से बाहर निकले। पश्चिम दिशा भी समाप्त हुई। मानव शल्य ही उस दिशा का मुख्य रक्षक था। वैशाख मास शुरू हो गया था, हमको बाहर निकले 5 मास हो गए थे। सौख्य के और युद्ध के दिन कैसे बीत जाते हैं इसका पता भी नहीं चलता। कम से कम योद्धाओं के ध्यान में तो यह बात कभी आती नहीं। अब एक ही दिशा शेष बची थी, उत्तर। उस दिशा की ओर केवल 5 ही राज्य थे। वैशाख में उनको हस्तगत कर वर्षा ऋतु से पहले हम हस्तिनापुर में वापस पहुंच जाना चाहते थे। हमारी योजना यह थी कि हमारी सेना कहीं भी वर्षा ऋतु की मूसलाधार वर्षा के आघात में न पड़ने पाए। उत्तर दिशा के कश्मीर देश को लक्ष्य बनाकर हम निरंतर द्रुत गति से बढ़ते जा रहे हैं। कश्मीर संपूर्ण आर्यावर्त के प्राकृतिक सौंदर्य से इतना परिपूर्ण कोई दूसरा देश नहीं था। यहीं पर पर्वतराज हिमालय का प्रथम दर्शन होने वाला था। कोहरे से आच्छादित घाटियों में हमारे सेनापति के जय जयकार की प्रतिध्वनियां गूंजने वाली थीं। आर्यावर्त के रूप में खड़ी हुई यौवन संपन्न प्रकृति देवी के भाल पर मानो सौभाग्य तिलक ही था कश्मीर। कुछ कवियों को पंडितों को मैंने हस्तिनापुर की राजसभा में कश्मीर का वर्णन करते हुए देखा सुना था कि कश्मीर स्वर्ग का पृथ्वी तल पर पड़ा हुआ प्रतिबिंब है, परंतु प्रत्यक्ष देखने का मुझको और कुछ और ही अनुभव हुआ। स्वर्ग के निदर्शक आकाश का केवल एक ही रंग था, नीला, परंतु कश्मीर की भूमि पर इतने रंग एकत्रित हो गए थे कि यदि स्वर्ग में रहने वाले देवतागण किसी समय अपने नीले राजमहल के गवाक्ष खोलकर नीचे देख ले तो निश्चय ही वे स्वर्ग का त्याग कर देते। ऐसे दिव्य मनोहारी विविध वर्णीय मुक्त सौंदर्य से विभूषित प्रति स्वर्ग ही था कश्मीर। जिस समय हमने कश्मीर में प्रवेश किया वह ठीक वसंत ऋतु का समय था। वसंत ऋतु में कश्मीर को देखने वाला कितना ही पाषाण हृदय क्यों न हो, वह प्रकृति के उस उन्मत्त रूप को देखकर उसके सम्मुख निश्चय ही नत हो जाएगा। यदि अश्वत्थामा हमारे साथ होता तो प्रसन्नता से पागल होकर वह अपने मस्तक पर का वस्त्र खोलकर तुरंत हवा में उड़ा देता। हरी सुकोमल घास के अतलसी वस्त्र धारण किए हुए पठार पर वह मुक्त मन से अपना शरीर डालता, आकाश की गहन गंभीर नीलिमा को घंटों तक देखता हुआ पड़ा रहता। पुष्पित प्रकृति को देखकर कलरव करते हुए विविध पक्षीगण मधुर स्वर में क्या क्या कह रहे हैं यह वह कान लगाकर सुनता। घाटियों में होकर घूमते समय छोटे छोटे फूलों के अगणित वन फैले हुए देखकर उसने अनेक बार अंगराज से पूछा होता कि कौन सा शस्त्र लाकर तुम इन फूलों के राज्य को जीतोगे, इन घाटियों की गहराई नापोगे, शिखरों की ऊंचाई पर पहुंचोगे। नहीं अंगराज, मानव सब कुछ जीत सकता है, परंतु प्रकृति के इस असीम भंडार को कोई कभी नहीं जीत पाएगा। प्रकृति प्रेम तो उसका जन्मजात स्वभाव था। भैया को भी उससे अपने उस आस्वाद का चस्का लगा दिया था। भगवान जाने वहाँ की इस सुंदरता का नशा न हो, कहीं यह विचार करके ही तो हमारे सेनापति ने हाथियों के पतक को साथ न लेकर पीछे छोड़ दिया था। हमारे केवल पदाति कश्मीर के वैभव संपन्न राजनगर सूर्यनगर की ओर मार्गस्थ हो गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर अनेक सरोवर दिखाई देने लगे। वे नील, पीत, सुवर्ण, धवल, रक्त, काषाय आदि विविध वर्णों के कमल पुष्पों से आच्छादित थे। उनका मकरंद सेवन करते हुए पुष्ट भ्रमरों के झुंड गुंजार कर रहे थे तथा विषतंतु खाते हुए जल क्रीड़ा करने वाले राजहंसों के पास चक्कर काट रहे थे। राजहंसों को उसका पता भी न था। सरोवर का जल तैरते हुए कमल पत्रों से आच्छादित था। जो स्थान खुला हुआ था वह पराग कणों से आवृत हो गया था। सरोवर, फूल, पक्षी, लता, वृक्ष, कछार, इनका चमत्कृत कर देने वाला सम्मेलन था कश्मीर। सूर्यनगर जीत कर हम हिमालय के दर्शन करने चल दिए। देवदारु, सुरपर्ण, चीण आदि के गगनचुंबी वृक्ष पीछे छूटने लगे। चंडोल, चक्रवाक, चातक, कपूत, मयूर, भारद्वाज, सारंग आदि अनेक पक्षी हमें यह संदेश देने लगे कि हिमालय की ओर जा रहे हो तो विनम्र होकर जाओ। कदली, निशिगंधा, मदनशर आदि की फुलवारियां पीछे छूटने लगी। अंत में भूभाग समाप्त हुआ और हिममय प्रदेश दृष्टिपथ में आया। हिमालय मानव को आतंकित करने के लिए मानव विश्व विधाता स्वयं अपना धारदार खड्ग म्यान से बाहर निकालकर हमारे सम्मुख एक शिखर के रूप में खड़ा था। हिम पिघलकर जल रूप में झर रही थी। उससे चमकते हुए शिखर के सौंदर्य को किसी की दृष्टि न लग जाए, इसीलिए श्वेत शुभ्र वारिदों ने उसको घेर रखा था या दूर स्थित कैलाश पर्वत रूपी शंकर से लज्जित होकर स्वयं उमा उस धवल वारिद रूपी वस्त्र को संभाल रही थी। भिन्न भिन्न स्थलों से देखने पर उस शिखर के विविध रूप दिखाई पड़ रहे थे। कभी शुभ्र वस्त्र परिधान किए हुए ध्यान मग्न ऋषि जैसा, कभी ध्वज दंड की तरह सीधा, तो कभी अधीर धरित्री द्वारा आकाश को लिंगन में भरने के लिए उठाए हुए तेजस्वी हाथ जैसा भावपूर्ण। अंगराज ने घुटने टेक कर उस पर्वत शिखर को भक्तिभाव से वंदन किया। धीरे धीरे कुछ कहते हुए क्षण भर आंखें बंद कर वे उसी स्थिति में घुटने टेके बैठे रहे। हाथ जुड़े हुए थे। मुख मुद्रा धीर गंभीर और शांत थी। जलमय हिम पर कानों के कुंडलों का प्रतिबिंब पड़ रहा था। क्षण भर बाद वे उठे। हम आगे दारद देश की ओर चलने लगे। दारदों का राज जीतकर हिमालय के नीचे होकर हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई। पीछे छूटे हुए हस्तिपथक आगे तंगड़ राज्य में आकर मिलने वाले थे। हिमालय के विविध रूप देखकर मन मुग्ध हो रहा था। कितने योजनों तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। दुग्धवाणी धवल एकदम निथरा हुआ। असीकी नदी का स्वच्छ पात्र पार कर तंगड़ राज्य में प्रवेश करते हुए ठंड की तीव्रता अनुभव होने लगी। ठीक वैशाख में जब इतनी ठंड थी तो शरद ऋतु में कितनी होगी, यह सोचकर वहां धैर्यपूर्वक रहने वाले तंगड़ों पर हमें आश्चर्य हुआ। तंगड़ों की सहन शक्ति कम थी। उन्होंने कर भार देकर हमारा स्वागत किया। बोरास फूल का स्वादिष्ट खाद्य दिया। हिमवान प्रदेश में जाने के लिए तंगड़ देश छोड़ते हुए मन में भावनाओं की भीड़ लग गई। हिमवान प्रदेश में अब हमें गंगा का उद्गम स्थल देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। जगत पालनी गंगा का जन्म स्थान, पुण्यदायिनी गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री। चुने हुए सैनिकों को लेकर हमने हिमवान राज्य में प्रवेश किया। शेष सेना को हस्तिनापुर की ओर प्रयाण करने का आदेश देकर यह सूचना दे दी गई कि जब तक हम न आए तब तक सीमा के बाहर रुके रहे। हिमवान प्रदेश में छोटे बड़े अनेक तीर्थ क्षेत्र थे। किसी का भी एक संग राज्य हिम सम्राट उस हिमालय की छाया में स्थापित हो ही नहीं सकता था। हम ही क्या, यदि आर्यावर्त के सभी राजागण एक संग बनाकर आ जाएं तब भी यह संभव नहीं था। और सच बात तो यह थी कि अब आक्रमण समाप्त हो गया था और यात्रा प्रारंभ हो गई थी। केदारलिंग पीछे छोड़कर हम पैदल ही यमुनोत्री पहुंचे। यमुनोत्री आगे चलकर यमुना के उल्लसित यौवन को जीवन रस देने वाले जीवनदायिनी अनंत काल से हिममय शिखर से द्रवित होने वाली हिम के धवल प्रांगण में कलकल करती उछलती कूदती हुई यमुना जल हाथ में लेकर अंजलि से उसका अर्घ्य अर्पण करने के लिए भैया ने योद्धा का वेश उतारा और एक सादा अधरीय धारण किया। दिग्विजय के युद्धों में सतत शस्त्र चलाने के कारण उनके जो भुजदंड अधिक बलशाली हो गए थे वे अब निरावृत हो गए। उनके स्वच्छ हाथों में के संपुट में यमुना का स्वच्छ जल नीचे स्वच्छ जल में गिरने लगा। ओम भूर भुवस्वः, उनकी आंखें बंद हो गईं। हिमालय का धवल वर्ण अधिक चमक रहा था या उनकी खुली भुजाओं के अभेद्य त्वचा का सुवर्ण वर्ण, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वे दिग्विजयी सेनापति हैं या त्यक्त सर्वाशक्ति आत्मनिग्रही सन्यासी यही पता नहीं चल रहा था। यमुनोत्री के पास एक दिन रहकर आगे गंगोत्री की यात्रा प्रारंभ हो गई। यहाँ मानवीय कोलाहल का स्पर्श तक नहीं था, सुनाई पड़ती थी तो केवल हिमालय के ऊपर से गिरने वाली प्रपातों की झरझर। हिमालय के चरणों में भला कौन क्या दिग्विजय करेगा, यहाँ यात्रा ही करनी पड़ती है। गंगोत्री की विख्यात भगीरथ शिला आई। नदी में स्नान कर हमारा दिग्विजयी नायक उस शिला पर आसीन हुआ। क्षण भर बाद उठकर गंगा के कलकल करते हुए जल में जाकर खड़ा हो गया। अपनी पीठ रूपी स्वर्ण ढाल सूर्य रश्मियों से तप्त होने लगी। सिर उठाकर वे एकटक सूर्य बिंब की ओर देख रहे थे। चारों ओर शांति थी। क्षण भर को मेरी इच्छा हुई कि मानव रूपी खिलौने को नचाने वाला कालचक्र यही रुक जाए। गगनभेदी पराक्रम के अनिंद्य आचरण के निष्कलंक सौंदर्य के साकार रूप मेरे अशरण अडिग वसु भैया ऐसे ही रहे। उनके मस्तक पर सहस्त्र रश्मि सूर्य ऐसे ही चमकता रहे। उनके चरण पखारने वाली गंगा अपनी कलकल ध्वनि से जयतु कर्ण कहती रहे। पर्वतों के हिमालय के पास मानवों का हिमालय ऐसे ही यहाँ जोड़कर खड़ा रहे और कालचक्र रुक जाए। तीन दिन गंगोत्री तट पर रहकर हम बद्री द्वार के पास आए। मार्ग में अनेक शिवलिंग थे, उन पर फूल चढ़ाकर शोणितपुर से हरिद्वार आए। हरिद्वार सरयू का उद्गम स्थल है, हमारी दिग्विजय यात्रा के अंतर्गत वह अंतिम नगर था। उत्तर दिशा भी समाप्त हुई, अब हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान। संग्राम युद्ध और यात्रा से थकित श्रांत शरीरों और मनों को विश्राम। सरयू को वंदन कर हम हस्तिनापुर की ओर चलने लगे। वैशाख समाप्त हो रहा था। नगर से बाहर निकले 6 मास बीत चुके थे। इस काल में हस्तिनापुर में क्या हुआ इसका हमें कुछ भी पता नहीं था। मेरा मन तो अपने नगर की ओर खींचा चला जा रहा था। युद्ध के कोलाहल में मन के किसी कोने में पड़ी हुई कुटुंबी जनों की स्मृतियां अब उफन उफन कर उभरी आ रही थी। मन के चारों ओर जमा होकर चक्कर लगा रही थी। 23 हरिद्वार से गंगा पार कर हम हस्तिनापुर की सीमा पर आए। 6 महीने बाद राजनगर का वह पहला ही दर्शन हमारे मन में मिश्रित भावनाओं के असंख्य फुहारे उड़ा रहा था। अग्रभाग में पदाति, बीच में अश्वसात तथा सबसे अंत में गजदल, इस प्रकार आकर्षक और अनुशासनबद्ध रचना करके हमारे सैनिक हमारे ही आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। नगर में होकर दिग्विजय सेना की उत्सव यात्रा निकलने वाली थी। चित्रकारों द्वारा सभी हाथियों के सूंड़े, गंडस्थल, कान आदि अंगों पर मध्य अवकाश में सुंदर रंगीन चित्रकारी करवा ली गई थी। हाथियों के पीठ पर सुगढ़ अंबारियां चढ़ा दी गई थी। महावतों ने युद्ध वेश उतार कर सुंदर राजवेश धारण कर लिए थे। उनके हाथों में लगे अंशुकों पर सुवर्ण पत्र चढ़ा दिए गए थे। घोड़ों के पीठ पर जरी से जटित चमकीले परियाण कस दिए गए थे। चर्म की वलगाएं निकालकर रेशमी धागों से तैयार की गई रज्जुओं की आकर्षक वलगाएं चढ़ा दी गई थी। हाथी, घोड़े, सबके सब सारे पथक पुष्प मालाओं से सजा दिए गए थे। उनके मस्तक पर कुमकुम बिखेर दिया गया था, इससे उन पर तत्क्षण दृष्टि जा पड़ती थी। योद्धाओं ने लौह त्राण उतार कर सुंदर राजवेश धारण कर लिए थे। उनके हाथों में खड्ग, भाले, त्रिशूल आदि थे। उनके सुतीक्ष्ण फल सूर्योदय की किरणों में चमक कर हस्तिनापुर वासियों से मानो कह रहे थे, उठो, इस दिग्विजयी सेनापति का स्वागत करो। इस संपूर्ण दिग्विजय में जो शस्त्र हमारे लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ था वह था बाण। इसीलिए सभी पथक प्रमुखों ने सैन्य की रचना बड़ी कुशलता से बाण के आकार की ही की थी। इस बाण का अग्रभाग अब हस्तिनापुर के उदर में घुसने वाला था। हमारा स्वागत करने के लिए नदी किनारे सीमा पर केवल 3 ही व्यक्ति थे, राजा दुर्योधन, अश्वत्थामन और सत्यसेन। हाथ उठाकर झटपट चलकर आते हुए हंसते हंसते पैरों के नीचे बालू रौंदते हुए, मैं कौरवराज हूँ या भूल कर, राजा दुर्योधन ने अंगराज को प्रगाढ़ आलिंगन में बांध लिया। हाथ की पुष्पमाला को अंगराज के कंठ में डालने का ही स्मरण उनको क्षण भर नहीं रहा। पश्चात उन्होंने भैया के गले में माला डाली। निशिगंधा की एक छोटी सी माला कलाई पर बांधते हुए वे कांपती हुई भर्राई आवाज में बोले, अंगराज, आज मेरा स्वप्न साकार हो गया। एक एक दिशा लेकर दिग्विजय करने वाले पांडव अब समझ जाएंगे कि इन चारों दिशाओं में एक बार ही दिग्विजय करने वाला कोई भी वीर इस आर्यावर्त में जीवित है और वह कौरवराज दुर्योधन का सखा कर्ण है। उसका आदरीय गंगा के वायलोरों से फूल उठा था। कुछ न कहकर दिग्विजयी सेना का सेनापति केवल मुस्कराया। अश्वत्थामा के मस्तक पर सदैव की भांति श्वेत वस्त्र नहीं है। यह देखते हुए भौंहें ऊंची कर उन्होंने गुरुपुत्र को आलिंगन में भर लिया और पूछा, अश्वत्थामन, आज तुम्हारा वस्त्र गुलाबी क्यों है? कर्ण, तुम जैसे दिग्विजय योद्धा का स्वागत करने के लिए वैराग्य निदर्शक धवल वस्त्र पहनकर कैसे आता मैं? इसलिए वैभव का निदर्शक यह गुलाबी वस्त्र ही मैंने चुना है। आज पहली बार ही मैंने अपने मस्तक पर बांधने वाले वस्त्र में परिवर्तन किया है, क्या यह तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है, मुझे वह अच्छा लगा है। सत्यसेन ने आगे बढ़कर भैया के चरणों से हाथ लगाया। क्यों सत्यसेन, घर बार सब कुशल से है? इन 6 महीनों में कुंडुपियों की कुशल पूछने वाला वह पहला ही प्रश्न था, वह भी सत्यसेन से। सब कुशल से है महाराज, सत्यसेन ने विनम्रता पूर्वक कहा। दुर्योधन के हाथ में एक हाथ डालकर बाणाकार सैन्य रचना के मुखाग्र के पास अंगराज मंद मंद पैर रखते हुए पहुंचे। उनके दूसरे हाथ में कुरुओं का मानबिंदु, सभी राजाओं को धूल चटाने वाला पुरातन राजदंड था। वह राजदंड वह मानबिंदु सूर्योदय की कोमल किरणों में चमकने लगा। राज यात्रा की पूरी तैयारी गंगा किनारे हो चुकी थी। वर्षा ऋतु के आगमन की आहट पाकर जातक पक्षी उत्कंठित होकर कदम वृक्ष की घनी पर्णराजी से आकाश की ओर लपकते हुए भेदक कर्कश स्वर निकाल रहे थे। वर्षा ऋतु आने वाली थी। अपनी जल संपत्ति का दान मुक्त हस्त से संसार को करने वाली यह वर्षा ऋतु तो मुझे सब ऋतुओं में दानवीर लगती आई थी। अल्पना से शुभ सूचक स्वास्तिक चिन्ह बनाकर आयोजकों ने ऐसी पूर्ण व्यवस्था की थी कि सेनापति का रथ बाणाकार सैन्य रचना के ठीक मुखाग्र पर खड़ा हो सके। उस स्वास्तिक चिन्ह की चारों रेखाएं जहां मिलती थी ठीक उस मध्य बिंदु पर जाकर भैया खड़े हो गए। उनके पीछे अपार सेना सागर बाण के दंड और पुच्छ का आकार लेकर खड़ा हुआ। एक सुसज्जित रथ लेकर राजसारथी प्रातिकामन सामने आया। उस रथ में 6 घोड़े जोतने की व्यवस्था होते हुए भी उसमें 5 घोड़े जोते गए थे। वे सभी धवल वर्णी थे, परंतु रिक्त प्रथम स्थान तत्क्षण दृष्टि खींच लेता था। क्यों प्रतिकामन, रथ में 5 घोड़े ही क्यों? स्वास्तिक में खड़े हुए सेनापति ने मस्तक ऊंचा करते हुए पूछा। इस रथ की यही प्रथा है। पहले इस रथ का उपयोग राजमाता कुंती देवी करती थी, तब से सभी सारथी इसमें 5 घोड़े ही जोतने आए हैं। इसीलिए मैंने भी उतने ही घोड़े जोते हैं महाराज। प्रतिकामन कांप रहा था, कदाचित वह अपने को निरपराध बताना चाहता था। तो फिर यहाँ लाने के लिए तुम्हें दूसरा रथ नहीं मिला? अंगराज, ऐसी बात नहीं है, यूँ तो सैकड़ों रथ हैं, परंतु मैंने ही प्रतिकामन को यह आज्ञा दी थी। मैं चाहता हूँ कि सभी नगर निवासी तुम्हारे दर्शन करें। इसके लिए किसी न किसी रथ की छतरी निकालनी ही थी, तो वह राजमाता कही जाने वाली कुंती के रथ की निकाल दी जाए तो क्या बिगड़ जाएगा? राजा दुर्योधन ने हंसते हुए कहा। उसकी कंजी आंखें चमक रही थी। बहुत अच्छे राजन, जितनी चतुराई से मैंने अपने सैनिकों को मरने से बचाया है, उतनी ही चतुराई से तुमने रथ चुनकर कुरुओं का एक रथ बचा लिया है, परंतु 5 घोड़ों से वह विशोभित दिखाई देता है। यह बात तुम्हारे ध्यान में कैसे ना आ सकी? उसी एकमात्र अपूर्णता को अब मैं स्वयं दूर किए देता हूँ, अपना वायुजित उसमें जोत कर। स्वास्तिक के मध्य से बाहर जाते हुए अंगराज ने वायुजित की वलगाएं मेरे हाथ से अपने हाथ में ले ली। वे वायुजित को खींचते हुए ले गए और स्वयं उस राजरथ में रिक्त स्थान पर उसको बांध दिया। आर्यावर्त में उड़ाने भरने वाला तेज वायुजित शेष 5 घोड़ों की अपेक्षा कुछ ऊंचा ही दिखाई देने लगा। देश देश की पराजित राजाओं द्वारा चढ़ाए गए विविध आकार के आभूषण, जरी जटित पर्याण, मस्तक पर अनेक रंग के पंखों का चूड़ालंकार तथा हिमालय के स्वच्छ स्फटिक जैसी हिम्र शुभ्रवर्ण, इनसे वह सभी की दृष्टि में तत्क्षण आ सकता था। वह इतना सुंदर लग रहा था कि किसी की भी दृष्टि लग जाए। रथ स्वास्तिक चिन्ह पर खड़ा हुआ। सदैव की भांति इस राज यात्रा में भी अपने प्रिय बंधु का सारथ्य करने के विचार से मैं रथ नीड पर चढ़ने लगा। मुझको रोकते हुए वसुभैया बोले, शोण, अब तुम सारथी नहीं हो, इस दिग्विजयी सेना के उपसेनापति हो। ऊपर आओ और यह राजध्वज हाथ में ले लो, सारथ सत्यसेन करेंगे। रथनीर छोड़कर पिछले आसनों वाले भाग में चढ़कर मैं राजध्वज हाथ में लेता हुआ अंगराज के दाएं हाथ खड़ा हो गया। राजा दुर्योधन बाईं ओर खड़े हो गए। उनके बाएं अश्वत्थामा खड़े थे। उनका गुलाबी वस्त्र फरफरा रहा था। सबके मध्य में अंगराज दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए। उन्होंने सेनापति का वेश उतारने से इनकार कर दिया था, इसीलिए उनके देह पर कुछ कुछ मैला स्वावेश था, परंतु उस वेश में भी हम चारों से अलग दिखाई पड़ रहे थे। एक तो उनके हाथ में राजदंड था, इसके अतिरिक्त वे हम सबसे अधिक ऊंचे भी थे। आसपास खड़े योद्धाओं ने चंपक, निशिगंध, बारीजात, अनंत और सुरंग के सुगंधी पुष्प रथ पर बिखेरे। मुट्ठियां भर भर कर कुमकुम फेंकने से आकाश आच्छादित हो गया। किसी ने तीव्र स्वर में घोषणा की, दिग्विजयी सेनापति अंगराज कर्ण महाराज की विजय हो। बाणाकार सैन्य रचना के लक्ष लक्ष कंठ गर्जना करने लगे। आकाश का भव्य नीला वितान भी उन गर्जनाओं से थरथराने लगा। वृक्षों के पत्ते तृणों की सांसें स्पंदित होने लगी थी, वे भी गरजने लगी, जय जय। मृदंग, शंख, रणबेर, डिंडिम, आनक, तंतुवीणा, गोमुख आदि एक दूसरे को मात करने वाले वाद्य एक बारगी बजने लगे। घोषणाओं में और उन वाद्यों में मानो जोरदार स्पर्धा होने लगी। जैसे ही सत्यसेन ने प्रत्युत फटकारा, रथ की घोड़े गतिमान हुई, बाण सरकने लगा। राजयात्रा प्रारंभ हो गई। मेरा मन अभिमान, आनंद, प्रेम भाव, वीरश्री आदि विविध भावनाओं से भर गया। आर्यावर्त में सर्वश्रेष्ठ यही वह हस्तिनापुर था, जहाँ संकुचित मन से मैंने और भाई सुभैया ने पहला कदम रखा था। और आज नगर के प्रत्येक मार्ग पर, प्रत्येक चौक में, प्रत्येक सौंद पर अनेक नगरजन अपने नेत्रों की निराजना से मेरे ज्येष्ठ बंधु की आरती उतारेंगे। मैं उनके पार्श्व में खड़ा खड़ा यह देखूंगा। बस एक क्षण को मेरी इच्छा हुई थी कि अब जीवन की यात्रा समाप्त हो जाए। सबसे श्रेष्ठ मृत्यु कौन सी है? मन के समाधान के अत्युच्च शिखर पर पहुंचकर मानव जिसको प्राप्त कर सकता है वह। इन बातों को सोचकर मेरी दोनों आंखों में आंसू छलछला आए। इन सब प्रसंगों का भैया के मन पर कितना गंभीर परिणाम हो रहा होगा, यह देखने के लिए मैंने उनकी मुद्रा की ओर देखा। वे सर्वथा शांत थे, नदी के दह की तरह निष्पंद। आत्माभिमान से अन्यों का अपने ऊपर अटल प्रेम देखकर किसी के भी मन में उत्पन्न होने वाली भावना की सहज कातरता, स्वमुख का अजीब सा कोलाहल, उमड़न, ऐसी कोई अस्पष्ट छाया भी उनके मुख पर नहीं थी। कुरुओं की राजसभा में रखी सूर्य की सुवर्ण प्रतिमा जैसा उनका मुख केवल तेज के वलय विकीर्ण कर रहा था। बाण धीरे धीरे नगर की ओर आगे सरकने लगा। हम दो सूत पुत्रों को पराक्रमी सेनापतियों में रूपांतरित कर हमारे स्वागत के लिए सज्जित हस्तिनापुर 6 महीनों की दीर्घ कालावधि के बाद हमारे सामने आया। घोषणाओं की वर्षा हो रही थी। आनंदोर्वियों के क्षेत्र प्रफुल्लित हो रहे थे। कण कण चेतना से आंदोलित हो रहा था। इस नगर ने ऐसा शुभ दिन अपने निर्माण से लेकर आज तक क्या कभी देखा होगा? सहस्त्रों क्षत्रियों ने सूत पुत्रों का इतना निश्चल, निरामय, स्नेह भरा, भक्ति सिंचित जय जयकार क्या कभी किसी राज्य में किया होगा? इन विचारों से भी आनंदाश्रुओं की झड़ी आंखों से बहने लगी। जीवन के कृत्य कृत्य होने का महान समाधान उसमें समाया हुआ था। उन अश्रुधाराओं को पोषने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। मेरे मन में आया था कि वे बहती ही रहे, अनंत काल तक ऐसे ही अविरल बहती रहे। अश्रुपूर्ण नेत्रों से सामने स्थिर नगर मुझे अस्पष्ट दिखाई देने लगा। वृक्ष, भवन, गोपुर, मंदिर सभी धूसरित प्रतीत होने लगे। परंतु एक पर्णकुटी की अस्पष्ट आकृति दिखाई देते ही मैंने उत्तरी से आंखें पोंछी। पर्णकुटी की असीम महिमा भैया ने चंपा नगरी में मुझे बता दी थी, इसीलिए मैं एकटक उस पर्णकुटी की ओर देखने लगा। वह विदुर जी की पर्णकुटी थी। द्वार में एक धवल वस्त्र धारणी ठगणी स्त्री मूर्तिवत खड़ी थी। दूर से वह अच्छी तरह पहचानी नहीं जा रही थी, परंतु राज यात्रा देखने के लिए सूत पुत्र को कर्तृत्ववान सेनापति के रूप में देखने के लिए वह स्त्री पंजे उचका रही थी। हमारा रथ विदुर जी की पर्णकुटी के सामने आया। वह स्त्री अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी। नगर की कोई भी स्त्री इस ढंग से एकदम द्वार में खड़ी होने का साहस नहीं कर सकती थी, इसीलिए आश्चर्य से मैंने देखा। विराज माता कुंती देवी थी। पर्णकुटी से एक आश्रम कन्या जलपूरित कुंभ लेकर झटपट बाहर आई। उसको रोककर राज माता ने उसके हाथ में एक करंडक देते हुए उससे कुछ कहा, यह मैंने देखा। आगे बढ़कर आश्रम कन्या ने जलपूरित कुंभ घोड़ों के खुरों पर रिक्त कर दिया। सत्यसेन से वह बोली, सेनापति थोड़ा नीचे उतरने का कष्ट करेंगे क्या? मैं उनके भाल पर कुमकुम तिलक लगाना चाहती हूँ। नहीं, सत्यसेन ने कहा, शायद दुर्योधन ने सत्यसेन को यह आदेश दे रखा होगा। सत्यसेन, वलगाएं खींचो, मैं नीचे उतरूंगा, अंगराज की धीर गंभीर आवाज गूंज उठी। रथ रुकते ही भैया कूद कर नीचे उतरे। उस दृष्ट आश्रम कन्या ने उनके भव्य कपाल पर कुमकुम तिलक लगाया। यह बात मेरे भी ध्यान में नहीं आई थी कि यद्यपि राज यात्रा की सभी तैयारियां हो चुकी थी, तथापि किसी ने भी हमारे सेनापति के भाल पर मंगल तिलक नहीं लगाया था। बस वही एक कमी उस आश्रम कन्या ने अनायास दूर कर दी थी। अंगराज ने कनिष्ठिकाल अंगुली से पुष्कराज से मड़ी हुई अंगूठी उतारकर उस कन्या के कुमकुम करंडक में रख दी। राज यात्रा आगे बढ़ी। सूर्य ऊपर चढ़ने लगा। अपने राज्य के राजदंड को अजेय बनाकर लौटने वाले अंगराज का स्वागत कुरुओं को करना था। समस्त नगर में स्थान स्थान पर शोभा द्वार बनाए गए थे। वे अशोक और आम्र शाखाओं से सुसज्जित किए गए थे। सुहागिनों ने आंगन में अल्पनाएं चित्रित कर मार्ग पर कस्तूरी केशर मिश्रित पानी का छिड़काव किया था। पुष्प मालाओं से सज्जित पताका या आकाश से बातें कर रही थी। प्रत्येक सौंध पर से नगरजन सुवर्ण पुष्प बरसा रहे थे। तारों की तरह वे राजमार्ग पर खचाखच भर गए थे। जलपूरित कुंभ वायुजित के खूरों पर रिक्त हो रहे थे। हमारे मन के कुंभ कृतार्थ होकर बहने लगे। घोषणाओं की डंडियां आकाश रूपी नगाड़े पर टकरा रही थी। सेनापति अंगराज कर्ण जयतु, सेनापति कर्ण जयतु, वीर कर्ण जयतु। मेरा शरीर उत्तरी के अतलसी धागे जैसा हल्का हो गया था। इन जयघोषों के समुद्र पर मैं मानो तैर रहा था, हिचकोले खा रहा था। हमारी सेना का बाण आगे आगे सरकता जा रहा था। सत्यसेन का संपूर्ण अंग कुमकुम से ढक गया था। मूल रूप में धवल वर्णी घोड़े कुमकुम वर्णी दिखाई दे रहे थे। इतना मस्त कर देने वाला, क्वचित बाण रहित कर देने वाला, विशुद्ध गर्व की भावनाओं को भी जागृत करने वाला दिन हम दोनों के ही जीवन में कभी नहीं आया था। भविष्य में आएगा ऐसा भी नहीं लगता था। इतना विराट प्रेम, इतना गगन स्पर्शी उत्साह। साधारण पाषाण से देवमूर्ति गढ़ देने वाली भव्य स्थिति और क्या होगी। इसके माथे पर महामंत्री विदुर द्वारा चढ़ाया गया त्रिकोणी भगवा राजध्वज फरफरा रहा था। वह राजप्रसाद आया। क्या नहीं घटित हुआ था इस राजभवन में, क्या नहीं देखा था पाषाणों को इस राजपुरुष ने। सूतपुत्र कहकर ठुकराया गया वसु भैया, गुरुद्रोण द्वारा उपेक्षित धनुर्विद्या का शिष्य, राज स्त्रियों द्वारा वरण योग्य परंतु सारथी कन्या के सामने वेदी पर खड़ा हुआ वह वीर, उत्तरी कंधे पर डालकर पैदल ही नदी किनारे पहुंचने वाला श्रद्धावान भक्त। सभी कुछ तो इस राजभवन के पाषाणों ने देखा, परंतु वे पाषाण आज जो कुछ देख रहे थे वह निश्चय अपूर्व था। वे आज दिग्विजय कर्ण को देख रहे थे। महाद्वार पर पितामह खड़े थे। राजयात्रा रुकी, वाद्यों की सम्मिश्र ध्वनि लुप्त हो गई। पितामह को देखते ही उनके द्वारा राजसभा में राजदंड फेंकने वाला दृश्य ज्यों का त्यों मेरी आंखों के सामने फिर गया। विगत बातों को भूलकर विशाल मन का वह कुरु नहीं, एक उच्च कुलीन धनुर्योद्धा अन्य एक धनुर्योद्धा के स्वागत के लिए महाद्वार पर खड़ा था। अंगराज ने रथ से उतरकर आगे बढ़कर अपने हाथ का राजदंड पितामह के हाथों में दे दिया। एक क्षण को उन्होंने उनकी दाढ़ी भरे भव्य मुख की ओर देखा और घड़ी भर को इतने उफनते हुए उत्साहपूर्ण नगरजनों के स्वागत से जिसके मन का एक भी कोना द्रवित नहीं हुआ था, वह महान वीर सेनापति पिघल गया। उसके नीलवाड़ी नेत्रों में अश्रुबिंदु झलक उठे। पुरातन महाद्वार की देहरी पर वित्तक्षण गिर पड़े। झुककर पितामह के चरणों का हाथ लगाता हुआ वह गदगद स्वर में बोला, आशीर्वाद पितामह, जयतु कर्ण जयतु। पितामह ने उसके कंधे पकड़कर ऊपर उठाया। उसके वृद्ध हाथों में राजदंड स्पंदित हो रहा था। दाढ़ी के लंबे शुभ्र केश थरथरा रहे थे। हमने 6 महीने बाद उस राजप्रसाद की देहरी पार की। भीतर की सीढ़ियों पर राधा माता, पिताजी और विशाली भाभी सहित सभी जन उपस्थित थे। वे अपनी आंखों में से हम बहुत पहले आलिंगन में कस चुके थे। उनके सामने हम खड़े हो गए। कोई कुछ भी नहीं कह पा रहा था। चारों ओर नितांत निस्तब्धता थी। फिर भी यह शांति सब कुछ प्रकट किए दे रही थी। हम एक ही हाड़ मांस के मनुष्य थे। यहाँ दिन कुछ कहे ही सब कुछ समझ में आ रहा था। आरती उतारते समय विशाली भाभी के हाथ इस प्रकार कांपने लगे कि थाल में रखी हुई निराजना जहाँ की तरह खड़खड़ करने लगी। भैया ने रोकने का बहुत प्रयत्न किया, फिर भी तो अश्रुबिंदु ढुलक कर थाल में रखी हुई निराजना की ज्योति पर पड़कर चर्र की आवाज़ करते हुए लुप्त हो गए। हमने पिताजी को वंदन किया। उनके हाथ की लकूटी और अधिक कांपने लगी। आशीर्वाद के लिए भी उनके होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे। बड़ी कठिनता से उन्होंने अपना हाथ हमारे सिर पर फेरा। राधा माता के चरणों को धूल सिर से लगाने के लिए हम झुके। उनकी आंखों से निकला हुआ एक एक अश्रुबिंदु हमारे मस्तकों पर पड़ा। शरीर पुलकित हो गया। हमारे दिग्विजय सच्चे अर्थों में पूर्ण हो गई, पवित्र हो गई। कर्ण शत्रुंजय, दोनों को छाती से लगाते हुए गदगद स्वर में माता बोली, नहीं मात, वसु और शोण कहो। मैंने उसको अपने वास्तविक नामों की याद दिलाई। पूर्ण मध्यान काल होने से सूर्यदेव अब तक ठीक सिर के ऊपर आ चुके थे। गर्मी के अकारण स्वेद से भीगा राजा दुर्योधन आगे आया। अंगराज का हाथ अपने हाथ में लेकर वह उनसे सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते दिग्विजय का वृत्तांत पूछने लगा। केवल एक सीढ़ी शेष रह गई थी। वह ठीक 105वीं सीढ़ी पर ठहर गया। अंगराज, तुम्हारे दिग्विजय से मेरा मन इतना अभिभूत हो गया है कि इस आनंदोपलक्ष्य में मैंने प्रीतिभोज का आयोजन किया है। तुम, शोण, अश्वत्थामा आदि सभी जन कल सहभोजन ग्रहण करेंगे। अपूप और नवनीत तुम्हें अच्छे लगेंगे न। थोड़ी देर ठहर कर उसने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि हम लोग अब राजसु यज्ञ भी जल्दी ही कर लें, क्यों, ठीक है ना। हाँ हाँ, यज्ञ अवश्य होगा, परंतु मुझको अपूप और नवनीत अच्छे लगते हैं, यह बात तुम कैसे जान गए राजन?
इस बात पर आश्चर्य हो रहा है तुम्हें? अंगराज शल्य से युद्ध करते समय हताश होकर जिस रात तुम पुरुषणी में खड़े रहे थे, उस रात तुमने कितनी अंजलियों का अर्घदान किया था, यह भी मैं निश्चित बता सकता हूँ। समस्त आर्यावर्त में मेरे दूत घूमते हैं। एक बात और कहूँ कर्ण, आज तुम राजदंड पितामह के हाथ में देने के बजाय यदि मेरे हाथ में देते तो अधिक अच्छा होता।
राजन, उसको तुम अपने हाथ में ही समझो। अब घोर संकट का कोई भी अवसर आने पर पितामह तुम्हारे लिए शस्त्र उठाएंगे। ऐसा करने के लिए वे विवश हो जाएं, इसीलिए जानबूझकर मैंने उनके हाथ में ही दिया। अंगराज, दुर्योधन और पितामह, यह त्रिकोण अब कभी नहीं टूट सकेगा। उन्होंने अंतिम सीढ़ी पर पैर रखा। सदैव रहस्यमय बातें करने वाला अश्वत्थामा उसी गंभीर विचार में मग्न था। हम सभागृह में सूर्य प्रतिमा का दर्शन करने चले। बाहर वैशाख की कड़ी धूप तप रही थी, लपटें लपलपा रही थी। 24. दूसरे दिन रात को सभाभोज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। राजा दुर्योधन, दुःशासन, मामा, जयद्रथ, युवराज सभी जन उपस्थित थे। आश्रम में अपना अन्न स्वयं पकाकर खाने के नियम के कारण केवल अश्वत्थामा ही नहीं आया था। अंगराज ने अपूप और नवनीत का अखंड भोजन किया तो अन्न सबने लटवाक पक्षी के मांस से बने पदार्थों का यथेक्ष हाथ साफ किया। तांबुल सेवन से पूर्व पुराने मधु का मध्य लेकर प्रबंधन भोजन गृह में आया। सबके हाथ में एक एक चषक देकर लंबे चंचु पात्र से उन चषकों को भरता गया। राजा दुर्योधन आसन से उठकर चषक ऊंचा कर कहने लगे, मेरे सखा अंगराज कर्ण ने दिग्विजय करके इतनी अपार कीर्ति कुरुराज को प्राप्त करा दी है, जितने के पितामह गुरुद्रोण, कृपाचार्य और महाराज पांडु ने कभी नहीं कराई थी। मेरी कामना है कि उनका यह पराक्रम इसी तरह बढ़ता रहे। दिग्विजय का आनंद मनाने के लिए हाथ के मधुर सोमरस का आप सब कुछ सब गुरु प्राशन करें। दिग्विजयी महाराज कर्ण जयतु जयतु। उन्होंने चषक होठ के पास ले जाकर एक घूट में ही उसका प्राशन करने से पूर्व उद्घोष किया। सबने चषक रिक्त किए, प्रबंजन ने चपलता से पुनः भर दिए। किसी का उत्साह भंग न हो इसीलिए हम दोनों आंखें मूंद कर उस तीव्र द्रव के घूंट भरने लगे। एक चषक जैसे तैसे समाप्त कर मैंने अंगराज के हाथ के चषक की ओर देखा। प्रबंजन ने उसको पुनः भर दिया। यूं तो हम युद्ध से पहले उत्साहवर्धन के लिए सोमरस लिया करते थे, परंतु वह इतना मादक नहीं होता था। परंतु इस समय हमारे चषकों में जो मध्य भरा गया था वह अत्यधिक मादक था, इसीलिए मैंने फुसफुसाते हुए अंगराज को सूचना दी, यह सोमरस नहीं है, अधिक मत लो। उन्होंने उसको पैरों तले लुढ़का दिया, परंतु प्रबंजन ने सबके साथ उसको पुनः भर दिया। भैया विवश हो गए। सब लोग सब भोजन के लिए एकत्रित हो गए थे या मध्य पीने के लिए, ये समझ में नहीं आ रहा था। सब युवराज, शकुनी और जयद्रथ सभी पानी की तरह मध्य पीने लगे। लगभग आधी घड़ी के अंदर ही बैठक का स्वरूप बदल गया। मामा झूमते हुए उठे और हाथों की पोली मुट्ठी कान के पास ले जाकर उसको ऐसे ही लाने लगे जैसे उसमें द्युत के पास है। भैया के सामने जाकर तोतले शब्दों में वे बोले, कर्ण तेरी जैसी 50 दिग्विजय मैं इन पासों से करके दिखा दूंगा। बोलते तेरा क्या दाव है? क्या कहा? 5, यह देखो 5। हाथ में कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने पासे फेंकने का अभिनय किया। 5, वे झूमते हुए जोर से चिल्लाए। पासे तो वहां थे नहीं, उनको इकट्ठा करने के लिए वे धड़ाम से नीचे गिर पड़े। मुझको उन पर बड़ी दया आई। दूसरे एक कोने में तो दुशासन एक पाषाण स्तंभ को स्त्री समझकर उसके वस्त्र उतारने के लिए चारों ओर घूम रहा था। दासी दासी बुदबुदा रहा था, खिलखिलाकर हंस रहा था। क्षण भर में ही सभी युवराज भागने लगे। हमने यद्यपि पर्याप्त मात्रा में मध्य नहीं लिया था, फिर भी चक्कर आने की दशा हो गई। कोई हाथ पैर पटक कर छोटे बच्चों की तरह आक्रोश कर रहा था, कोई लुढ़कता हुआ लौट रहा था। दिग्विजय में किसी राजा ने यदि मेरा हमारा पराभव कर दिया होता तब भी मुझको इतना बड़ा आघात न लगा होता जितना कि प्रचंड आघात इन सबों का बकवास सुनकर लगा। अंत में स्वयं राजा दुर्योधन भी बड़बड़ाते हुए उठे, अंगराज तुम्हारी दिग्विजय बेल्ट है, जिस अर्जुन ने किराट रूपधारी शंकर को पराजित कर दिया वह अर्जुन अजेय है, उसको तुम कैसे जीतोगे? केवल अर्घ देने से क्या लाभ? अर्जुन अर्जुन, उनका संतुलन बिगड़ रहा था, आंखें आधी में झूमने वाले बांसों की झुंड की तरह हिल रहा था, शब्दों के रूप में अजीब कर्कश ध्वनि निकल रही थी। दुर्योधन, भैया इतनी जोर से चिल्लाए कि प्रबंजन के हाथ से चंचु पात्र छूट कर नीचे गिर पड़ा। शल्य द्वारा भोजपत्र पर लिखवाते समय जो सात्विक संताप उनके नेत्रों से उफन कर बह रहा था उससे कई गुना अधिक
वे इस समय संतप्त हो उठे थे। नासिका का अग्रभाग आरक्त हो गया था, आग बरसाने वाली आंखें तेजी से घूर रही थी, या मस्तक की धमनी अधिक वेग से झंकृत थी, यह समझ में नहीं आ रहा था। उनके शब्द उनके बाणों की अपेक्षा अधिक वेगवान थे। हाथ में लगा हुआ चषक थर थर काँप रहा था। तथा एक क्षण अपने आसन से उठकर, जैसे वर्षा ऋतु में मृग नक्षत्र धारासार बरसता है, वैसे ही वे बोलने लगे। युवराज कहलाने वाले मदांध मद्यपियों, मध्य यदि तुम जैसे क्षत्रियों को भी गर्दभ बना सकता है तो धिक्कार है उस मध्य को और तुम मद्यपी लोगों को। पांडवों जैसे बलशाली शत्रुओं के जीवित होते हुए जिस मध्य ने तुमको उनकी स्मृति तक बुला दी है, उस मध्य को धिक्कार है। मैं अंगराज कर्ण आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं अर्जुन का वध नहीं कर लूंगा, तब तक भूल कर भी मध्य नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा। इतना ही नहीं, क्योंकि केवल उसके रक्त से ही पैर धोने हैं, इसीलिए मैं अपने पैर भी तब तक नहीं धोऊंगा। अर्जुन को अजेय कहने वाले दुर्योधन, मेरी दिग्विजय यदि तुमको पर्याप्त न लगती हो, मेरी सूर्य आराधना भी यदि उसके लिए कम सिद्ध हो रही हो, मेरे पुण्य कम प्रतीत हो रहे हों, तो अब भविष्य में मैं दान धर्म से अपने पुण्यों की कमी दूर कर दूंगा। परंतु अर्जुन के भय से दबे हुए दुर्बल मैं उसको निश्चय ही जान से मारूंगा। भैया कुछ देर रुके और दृढ़ता से फिर गर्जे, आज से कोई याचक अंगराज कर्ण के द्वार से कभी रिक्त हाथ वापस नहीं जाएगा, जब तक इस देह में प्राण है। हाथ में लगे चषक को फेंक कर वे झटपट कक्ष से बाहर चले गए, प्रज्वलित पुच्छ वाले बाण की तरह। उनकी वह घोर प्रतिज्ञा सुनकर मेरा दिग्विजय का आनंद ठंडा पड़ गया। न जाने क्या होने वाला है, इस संदेह से मैं भी खिन्न मन से उनके पीछे पीछे बाहर आया। झंझावात के बाद आम्र वृक्ष के नीचे जैसे फलों का अस्त व्यस्त ढेर लग जाता है, वैसे ही कुरुओं के सौ युवराज इस समय संज्ञाहीन पड़े हुए थे। उनका बड़बड़ाना बंद हो गया था। 25 वैशाख समाप्त होने के कारण वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। नगर के कूट, बुर्ज, गोपुर और भवन के शिखरों पर मूसलाधार वर्षा ने जल बरसाना प्रारंभ कर दिया। भैया की दान की प्रतिज्ञा की सूचना संपूर्ण नगर में फैल गई। सुबह सुबह याचक राजभवन आकर भीड़ लगाया करते। कोई वर्षा से रक्षा करने के लिए घर का सामान, कोई जल के कारण अकूर व्याधि से मरे हुए घोड़े के बदले में दूसरा घोड़ा, कोई धन, कोई धान्य, कोई धेनु, इस प्रकार अनेक मांगे लेकर याचक आने लगे। प्रातःकाल के नित्य कर्म समाप्त कर वसु भैया पहले सभी याचकों को दान करने के बाद ही भोजन करते। याचकों के अविरत आवागमन से राजभवन की व्यापार वृद्धि का रूप प्राप्त हो गया। दुर्योधन के चरणों में दिग्विजय की प्राप्त संपत्ति पर्याप्त मात्रा में चढ़ाकर जो बची थी वह भी अनेक गाड़ियों से भरी थी। आर्यावर्त के सभी राज्यों के याचक भी यदि आ जाते तब भी वह समाप्त न होती। उस संपत्ति का दान कर वे अब जनमन के राज्य जीतने में लगे। दीन, दुर्बल, अपंग, संतरस्त, पीड़ित, ब्राह्मण, अनाथ, व्याधिग्रस्त सबको बस एक ही आधार मिल गया था, दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण। राजभवन के सामने चौक में पत्थर के चबूतरे पर वे बैठ जाते। वे जो जो वस्तु वे मांगते उनको देते समय मुझे वसु भैया पर विलक्षण आश्चर्य होने लगा। पहले वे प्रत्येक याचक का मधुर मुस्कुराहट से स्वागत करते। जो कभी सैनिकों को देखने को नहीं मिला था वह अब याचकों को मिल रहा था। जो संपत्ति वन वन भटक कर उन्होंने प्राप्त की थी वे अब मुस्कुराते हुए सहज ही सहस्त्र सहस्त्र व्यक्तियों को देने लगे। अश्वत्थामा ने अपने पत्र में यह कहा था कि प्रकृति के मनोरम दृश्य देखकर जो आनंद होता है वह 10 दिग्विजयों के आनंद से भी अधिक श्रेष्ठ होता है, यह मुझको अच्छी तरह स्मरण था। एक वृद्धा जो जरी जटित वस्त्र देते हुए अंगराज ने हमारे पास ही खड़े हुए अश्वत्थामा से पूछा, गुरुपुत्र, 10 दिग्विजयों का आनंद, अनेक प्रकृति रम्य दृश्य देखते समय होने वाला आनंद और ऐसी एक अनाथ, निराश्रित, त्रस्त, पीड़ित, दुर्बल के आंसू पोंछते समय होने वाला आनंद, इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? अश्वत्थामा के पास इसका उत्तर नहीं था, वह केवल हंस दिया। आर्द्रा नक्षत्र के कारण आकाश में घिरे हुए मेघ अचानक ही बरसने लगे। मानो वे मेघ स्वयं कह रहे थे कि दुर्बल को दान देकर सबल बनाने का आनंद ही सर्वश्रेष्ठ आनंद है। वर्षा के धारों से भीगने वाले याचकों में हलचल मच गई। अंगराज ने सिर पर वस्त्र छत्र धारण करने वाले सेवक को दूर कर भीगते भीगते दान देने देते रहना स्वीकार किया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मूसलाधार वर्षा और दान पर दान करते हुए सुभैया दोनों में दातृत्व के संबंध में स्पर्धा हो रही हो। सुवर्ण, मोती, प्रवाल, हीरे, वैदुर्य आदि मुट्ठी भर कर वे याचकों की झोली में मुक्त मन से देने लगे। राजभवन के सौंत पर से पितामह और महामंत्री विदुर यह देख रहे थे, इसका उनको पता नहीं था। उनका दान याचक की झोली में अच्छी तरह पड़े, इसीलिए अश्वत्थामा प्रत्येक याचक को झोली साधने में सहायता करने लगे। हम वर्षा में भीग रहे थे, इसका भान हम तीनों में से किसी को भी नहीं था। सभी याचक दान लेकर दानवीर कर्ण चिरायु हूँ कहते हुए महाद्वार से बाहर चले गए। केवल दो ही याचक शेष रह गए। वे दोनों ही इतने वृद्ध थे कि भीगने के कारण ठिठुर रहे थे। उनमें से एक का शरीर नीलवर्ण का था। युवराज अर्जुन और यादवराज श्री कृष्ण के अतिरिक्त नील देह के अन्य किसी व्यक्ति को मैंने कहीं देखा हो मुझे तो स्मरण नहीं था। याचक होने के कारण ऐसी कोई बात उससे पूछी भी नहीं जा सकती थी। दूसरे वृद्ध की मुखमुद्रा गोल थी। वह एकटक अंगराज के पैरों की ओर देख रहा था।